ग्यारहवां प्रभाव। क्रम से लेकर अपनुहूति तक के भिन्न भिन्न प्रकार के 13 अलंकार एक ही प्रभाव के अंतर्गत रख दिए हैं। पहला अलंकार क्रम है, परंतु यह मम्मट यथासंख्य या क्रम नहीं है। लक्षण से तो कुछ स्पष्ट नहीं होता। हाँ, उदाहरणों से यह माना जा सकता है कि केशव का क्रम मम्मट का एकावली अलंकार है। केशव का दूसरा उदाहरण मम्मट द्वारा एकावली के प्रसंग में उद्धृत एक छंद का स्पष्ट अनुकरण है। गणना अलंकार सामान्य अलंकारों के साथ रहता है तो अधिक अच्छा था। इसमें उदीयमान कवि को यह बतलाया है कि लोक में किस वस्तु की कितनी संख्या मानी गई है और 1 से लेकर 10 तक की संख्या की शिक्षा पाठक को मिल जाती है। आसुर अलंकार डंडी तथा भामह ने माना है, परंतु केशव ने गुरुजनों के आशीर्वाद मात्र को अलंकार कह दिया है। संस्कृत आचार्य चमत्कार उस स्थल पर मानते हैं जहाँ उपभोक्ता की अभिलषित वस्तु से उस कथन का संबंध हो, पर केशव ने इस विशेषता पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार डंडी के प्रेयस अलंकार का अनुकरण करते हुए भी केशव का प्रेम अलंकार प्रीति का वर्णन बन गया है। श्लेष केशव का अपना अलंकार है। सामान्य लक्षण के अनंतर 2 से 5 तक वाले छंदों के उदाहरण हैं। अब अभिन्न पद तथा भिन्न पद श्लेष के ये 2 भेद किए हैं। अभिन्न पद का लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण है। भिन्न पद का भी लक्षण भी है। भिन्न पद का दूसरा नाम उपमा श्लेष भी है। ऐसे श्लेष प्रायः उपमा के लिए लिखे जाते हैं। भिन्न पद और अभिन्न पद का यह विभाजन सभंग पद तथा अभंग पद के विभाजन से भिन्न है। सभंग पद तथा अभंग पद तो भिन्न पद के ही 2 भेद हैं। केशव ने श्लेष के 5 भेद और किए हैं। अभिन्न क्रिया, भिन्न क्रिया, विरुद्ध कर्मा, नियम श्लेष तथा विरोधी श्लेष, परंतु इनके लक्षण नहीं किए, केवल उदाहरण हैं। डंडी ने भिन्न पद तथा अभिन्न पद के अतिरिक्त श्लेष के 7 भेद और किए थे। अभिन्न क्रिया, अविरुद्ध क्रिया, विरुद्ध क्रिया, सनियम, नियमापेक्ष रूपोक्ति, अविरोधी तथा विरोधी। केशव ने अपनी सामग्री प्रायः काव्यादर्श से ही ली है। 1 का नाम बदल दिया है, 1 बढ़ा दिया है तथा 3 भेद छोड़ दिए हैं। डंडी के समान ही केशव ने श्लेष को सर्वत्र अंगी माना है और दूसरे अलंकारों को अंग। फलतः जिन उदाहरणों में दूसरे अलंकारों का चमत्कार है वहां भी श्लेष को मुख्यता दी है। नियम श्लेष के 2 छंद श्लेष के अपेक्षा परिसंख्या के अधिक अच्छे उदाहरण बन सकते थे। सूक्ष्म के लक्षण में डंडी और मम्मट ने इंगित तथा आकार से अर्थ का प्रकटीकरण माना है। केशव ने 2 परिवर्तन किए, साधनों में भाव प्रभाव जोड़ दिया और अभिव्यक्ता के स्थान पर ग्रहिता को अधिक महत्व दे दिया। जाने जिए की बात, कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों सुधार निरर्थक हैं। डंडी ने लेस अलंकार के 2 रूप माने हैं, जहाँ प्रकट होने वाली वस्तु को चतुराई से छिपाया जाए, जहाँ लेसतः कृता स्तुति से निंदा या निंदा से स्तुति हो। प्रथम रूप डंडी को स्वीकृत है और कदाचित इसलिए केशव ने केवल इसी की चर्चा की है। दूसरा रूप डंडी ने लिखा अवश्य है, परंतु दूसरों का मत मानकर अपना नहीं, पीछे संस्कृत के आचार्य अप्पय दीक्षित आदि ने इसी को लिखा है, प्रथम को नहीं। नव्य आचार्यों मम्मट विश्वनाथ ने इसकी चर्चा नहीं की। निदर्शन अलंकार में डंडी का लक्षण तथा उदाहरण दोनों में अनुकरण है। काव्यादर्श में प्रेयस उज्रस्वी तथा रस्वत एक साथ आए हैं। केशव ने प्रेयस का नाम बदलकर ऊपर चर्चा कर दी है। ऊर्जा को संक्षिप्त में कहा है, परंतु रस्वत में रस वर्णन का पर्याप्त विस्तार है। डंडी तथा केशव ने अर्थांतर न्यास का एक ही लक्षण दिया है, परंतु भेदों में अंतर है। केशव ने 4 भेद ही किए हैं, युक्त, अयुक्त, अयुक्त युक्त, युक्तायुक्त और प्रत्येक का लक्षण दे दिया है। ये भेद काव्यादर्श में भी है, परंतु इनसे पूर्व 4 भेद और हैं। विश्वव्यापी, विशेषस्थ, श्लेषाविद तथा विरोधवान, केशव ने इनको देना उचित न समझा। काव्यलिंग अलग अलंकार नहीं है, युक्तांतर न्यास को ही काव्यलिंग समझना चाहिए। मम्मट ने उपमान से उपमेय में अधिक होने पर व्यतिरेक अलंकार माना, परंतु डंडी ने भेद कथनम मात्र को व्यतिरेक का आधार कहा था। केशव के लक्षण में डंडी का अनुकरण है, परंतु कविप्रिया में इसके 2 भेद हैं, युक्त व्यतिरेक तथा सहज व्यतिरेक, जिनका लक्षण नहीं दिया। डंडी ने इस संबंध में सादृश्य 2 प्रकार का माना है, शब्दोपात तथा प्रतीत। अनुमान से जान पड़ता है कि केशव ने इसी आधार पर व्यतिरेक के 2 भेद कर दिए और उनको युक्त तथा सहज नाम दे दिए। केशव ने अपनहूति के केवल उस भेद को लिया है जिसको छेकापनहूति कहते हैं और दूसरी में दूसरे भेद भी हैं। 12वां प्रभाव। इस प्रभाव में उक्ति के अतिरिक्त पांच अलंकार और हैं। उक्ति कोई अलग अलंकार नहीं, प्रत्युत उक्ति मूलक पांच अलंकारों का समुदाय नाम है। न जाने क्यों इसी प्रभाव में पर्यायोक्ति को अलग से गिनाया है। वक्रोक्ति काव्यादर्श में नहीं है, केशव ने इसको स्वतंत्र रूप से लिखा है, परंतु नव्य आचार्यों के समान इसको एक शब्दालंकार मात्र ना मानकर प्राच्यों के अनुकरण पर व्यंग्य का पर्यावाची माना बना दिया है। अन्योक्ति उन दिनों सूक्तिकारों का प्रिय चमत्कार था, केशव में भी इसलिए आ गया है। हाँ, समासोक्ति का नितांत अभाव खटकता है। व्यधिकरणोक्ति एक नया नाम है जिसको आजकल असंगति कह सकते हैं। उदाहरण बहुत सुंदर है। काव्यादर्श के अनुसार विश्वसोक्ति अलंकार वहां है जहां गुण, जाति, क्रिया आदि का निष्फलत्व दिखलाया जाए, परंतु नव्य आचार्यों के अनुकरण पर केशव ने अखंड कारण के विद्वान रहने पर भी कार्य की असिद्धि से में यह अलंकार माना है। सहोक्ति का लक्षण दंडी में अपूर्ण है तथा केशव में भी, क्योंकि जब इसके मूल में अतिशोक्ति होगी तभी चमत्कार आएगा। संबंधी भेद से जब दो भिन्न गुणों या क्रियाओं की सह शब्द की सामर्थ्य से एक शब्द से एक कालीनता प्रतिपादित की जाए, उदाहरण निश्चय ही उपयुक्त है। डंडी ने केवल निंदा के मिश्र स्तुति का ही वर्णन किया था, परंतु केशव में व्याज निंदा भी है और व्याज स्तुति भी, और उदाहरण श्लिष्ट भी है तथा श्लेष रहित भी। अमित अलंकार बिल्कुल नया है जहाँ साधक की सिद्धि का साधन ही स्वयं भोग कर ले। नायिका ने सखी को भेजा कि वह नायक को लिवा लाए, परंतु वह स्वयं ही नायक के साथ रमण करने लग गई। विषादन अलंकार में लगभग यही चमत्कार होता है। पर्यायोक्ति के लक्षण और उदाहरण प्रहर्षण के लक्षण और उदाहरण बन गए हैं, क्योंकि अदृष्ट कारण से बिना प्रयत्न के ही इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। दंडी में यह भूल नहीं है, वे इष्टार्थ को साक्षात न कहकर सिद्धि के लिए प्रकारांतर से कहने में यह चमत्कार मानते हैं। युक्त अलंकार तो स्वभावोक्ति ही है और केशवदास ने लगभग एक ही शब्दावली में दोनों के लक्षण दिए हैं, परंतु उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि स्वभावोक्ति में रूप गुण का वर्णन होता है शिशु का या बालिका का, युक्त में रूप बल का वर्णन रहता है युक्ति या युवक का। एक में कोमलता और सौकुमार्य है, दूसरे में क्षमता तथा बल। 13वां प्रभाव, किसी कार्य को प्रारंभ कर देने पर दैवयोग से उनका साधन समाप्त हो जाना डंडी के मत में समाहित का लक्षण है। केशव ने न होने वाले कार्य के दैवयोग से हो जाने में यह चमत्कार माना है। भोजराज का लक्षण भी डंडी में मिलता है और उसी में चमत्कार अधिक है, क्योंकि देवी सहायता उद्दीपक बन जाती है। डंडी और केशव के उदाहरण एक ही हैं। सुसिद्ध अलंकार में कोई व्यक्ति साधन जुटा मरता है, परंतु अन्य व्यक्ति उसका फल भोगता है। प्रसिद्ध में साधन एक व्यक्ति जुटाता है, परंतु सिद्धि अनेकों को प्राप्त होती है। विपरीत अलंकार वहां होता है जहां कार्य का साधक ही स्वयं बाधक बन जाए। यह अलंकार केशव की स्वतंत्र सूझ के द्योतक है। डंडी और केसर के रूपक में लक्षण अत्यंत प्राथमिक अवस्था के से हैं। दोनों ने भेद बतलाने से पूर्व कुछ उदाहरण दे दिए हैं। रूपक के भेद तो अनेक हैं, परंतु केशव ने तीन स्वाभाविक या सरल भेदों की ही चर्चा की है। ये भेद हैं अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक तथा रूपक रूपक। विरुद्ध रूपक तथा रूपक रूपक नाम डंडी के अनेक भेदों के बीच भी स्थान पा गए हैं, परंतु केशव का विरुद्ध रूपक डंडी से नहीं मिलता, प्रत्युत रूपक रूप कातिशयोक्ति बन गया है। रूपक रूपक में भी डंडी की विशेषता नहीं आ पाई। अद्भुत रूपक में व्यतिरेक की ध्वनि ही अद्भुत है, यह डंडी के किसी भेद से नहीं मिलता। डंडी के ही अनुसार रूपक के उपरांत दीपक अलंकार आता है। इसके अनेक भेदों में से केशव ने केवल दो भेदों का वर्णन किया है, मणिदीपक तथा माला दीपक। मणिदीपक किस किस वर्णन में आना चाहिए यह बतलाना केशव की एक विशेषता है। माला दीपक डंडी में भी है, लक्षण दोनों के समान है, उदाहरणों में भेद है। प्रहेलिका अलंकार केवल पहेली पर है, यह अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है। नव आचार्यों ने जिनको विषादन नाम दिया है वही केसर का परिवृत्त अलंकार है। डंडी का परिवृत्ति इससे भिन्न है। दूसरे उदाहरण के तीसरे चरण में वास्तविक परिवृत्ति का चमत्कार है भी। जान पड़ता है कि केशव ने समन्यूनाधिक विनिमय के रहस्य पर ध्यान न दिया और इस अलंकार का क्षेत्र व्यापक बना बैठे, जिससे विषादन भी इसमें समा गया। ऊपरी कथित अमित अलंकार तथा इस परिवृत्त अलंकार के क्षेत्र अलग अलग हैं। 14वां प्रभाव, उपमा अलंकार में पूरा एक प्रभाव लगा है और 22 भेदों का वर्णन है, जिनमें से ये 15 भेद डंडी के ज्यों के त्यों लिए हैं। पहला संशय उपमा, दूसरा हेतुपमा, तीसरा अभूतोपमा, चौथा अद्भुत उपमा, पांचवा विक्रियोपमा, छठा मोह उपमा, सातवां नियम उपमा, आठवां अतिशय उपमा, नौवां उत्प्रेक्ष उपमा, दसवां श्लेष उपमा, ग्यारहवां धर्म उपमा, बारहवां निर्णय उपमा, तेरहवां असंभवितोपमा, 14 विरोधा उपमा और 15 मालोपमा। शेष 7 भेदों में से दुष्मोपमा, भूपनोपमा, परस्परोपमा और लाक्षणिकोपमा, दंडी की क्रमशः निंदोपमा, प्रशंसोपमा, अन्योन्यमा तथा समानोपमा है। केशव के नाम दंडी के नामों की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय जान पड़ते हैं। केशव की गुणाधिकोपमा और संकीर्णोपमा क्रमशः दंडी की बहुपमा तथा ललितोपमा से मिलती जुलती है। विपरीतोपमा में उपमा का कोई लक्षण नहीं है। अलंकार शास्त्र के प्रारंभिक दिनों में उपमा का क्षेत्र बड़ा व्यापक था और आज के बहुत से सादृश्य मूलक अलंकार उस समय स्वतंत्र अस्तित्व न रखने के कारण उपमा के ही भेदोपेत थे। केशव में भी स्वभावतः यही प्रवृत्ति है, अतः उनके संशयोपमा, मोहोपमा, अतिशयोपमा आदि भेद क्रमशः संदेह, भ्रम तथा अनन्वय अलंकार ही है। 15 प्रभाव। यमक अलंकार का भी पूरे एक प्रभाव में विस्तार है। लक्षण के अनंतर आदि पद, द्वितीय पद आदि के उदाहरण दे दिए हैं। यमक के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, पहला अव्यपेत तथा सव्यपेत, दूसरा सुखकर तथा दुखकर। दोनों का आधार काव्यादर्श है। सव्येत तथा अव्यपेत के भेद पुराने आचार्यों को मानते, परंतु नव आचार्यों ने इनका त्याग कर दिया। सुख संदेश आदि भेद देना उनको पसंद न आया। 16 प्रभाव। अंतिम प्रभाव में चित्र अलंकार का वर्णन है। यह चित्र एक गहरा समुद्र है जिसमें भले भले गोता खा जाते हैं। केशव ने उसके केवल कुछ कड़ों का ही वर्णन किया है। काव्य के सामान्य नियम जहां यहां लागू नहीं होते। अनुस्वार, विसर्ग, ह्रस्व, दीर्घ आदि को स्वतंत्र अधिकार है और व, ब, ज से य में ये भेद नहीं रहता। आगे अनेक प्रकार के लक्षण तथा उदाहरण हैं जिनको पढ़ना बड़े धैर्य तथा साहस का काम है। समझना तथा सीखना तो शायद आजकल असंभव है। केशवदास हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित आचार्य हैं। संस्कृत अलंकार शास्त्र तथा साहित्य का जितना ठोस ज्ञान उनको था उतना किसी दूसरे को नहीं, और जिस अधिकार तथा प्रौढ़ता से उन्होंने विवेचन किया है उसको किसी दूसरे में पा सकना संभव नहीं है। यदि उनको कवि कहें तो व्यापक अर्थ में ही, क्योंकि केशव में भावुकता के अपेक्षा पांडित्य अधिक है जो आचार्य का प्रमुख गुण है। हिंदी के पंडितों ने केशव के आचार्यत्व को बड़ा आदर दिया है। उनकी कृतियों पर टीकाएं लिखी हैं तथा उनके मत को ससम्मान उद्धृत किया है। कविप्रिया न किसी ग्रंथ का अनुवाद है और न सुनी सुनाई बातों का संग्रह मात्र। जिस युग में अलंकार शास्त्र का इतना चर्वित चवर्ण तथा मंथन उल्लोडन हो रहा हो, उस युग में किसी भी प्रतिभाशाली पंडित के लिए संभव नहीं होता कि अपने समसामयिक या अपने से कुछ पूर्व के आचार्यों का समर्थन करके स्वयं तुच्छ बन जाए। इसलिए हमारे अभिमानी आचार्यों ने रसवादी अलंकार शास्त्रियों की हाँ में हाँ न मिलाकर पुराने आचार्यों का समर्थन किया, फिर भी अंधानुसरण नहीं मिलता। कितने स्थलों पर वे डंडी से सहमत ना हो सके, कहीं वे मम्मट विश्वनाथ की मान लेते हैं, कहीं उनका अपना अलग मत है। जहां केशव का मत किसी से नहीं मिलता वहां दोनों की संभावनाएं हैं। पहला, उन पर किसी ऐसे संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव हो जो अभी तक आलोचकों के देखने में नहीं आया। दूसरा, उन्होंने देशकाल पात्र को दृष्टि में रखकर आवश्यक काटछाट कर दी हो। कविप्रिया की परंपरा, उसके अधिकारी तथा इस बात को कि यह हिंदी का सर्वप्रथम प्रौढ़ अलंकार ग्रंथ है ध्यान में रखकर यदि मूल्यांकन किया जाए तो आचार्य केशव की प्रतिष्ठा में संदेह नहीं किया जा सकता। कविप्रिया के विषय निर्वाह में पूरी वैज्ञानिकता है और विषय क्रम भी स्वाभाविक एवं पूर्वक विस्मित है, विसम्मत है, पूर्व कवि सम्मत है। लक्षण संस्कृत के समान ही कसे हुए तो नहीं हो सकते, परंतु हिंदी के दूसरे आचार्यों की तुलना में वे कम शिथिल हैं। वस्तुतः संस्कृत में लिखे लक्षणों के समान इनको भी वृत्ति की अपेक्षा है। उदाहरण मौलिक तो है ही, उपयुक्त भी है। कहीं कहीं संस्कृत का छायानुवाद है। केशव के उदाहरण कवित सवैया जैसे बड़े छंदों में हैं, परंतु संस्कृत के बहुत सारे उदाहरण अनुष्टुप जैसे छोटे छंदों में थे। फलतः केशव की एक या दो पंक्तियों में ही उनका भाव समा गया। इस दिशा में केशव के शेष चरण कभी कभी पाठक को भुलावे में डाल देते हैं। वह समस्त छंद में उदाहरण खोजता है, परंतु वस्तुतः वैसा नहीं होता। उदाहरणों में वर्णन की प्रवृत्ति युग प्रभाव की सूचक है। विशिष्ट अलंकार में भी केशव की प्रतिभा अपूर्व है। स्वभावोक्ति तथा युक्त अलंकार का भेद बड़ा ध्यान देने योग्य है। गणना अमित, युक्त, सुसिद्ध, प्रसिद्ध तथा विपरीत अलंकार बिल्कुल नए हैं। क्रम अलग है और व्याधिकरणोक्ति एक नया नाम है। केशव के परिवृत्ति अलंकार का क्षेत्र बहुत व्यापक बन गया है। उनकी ब्याज स्तुति भी डंडी से व्यापक है। यमक, व्यतिरेक, दीपक आदि भेदों में केशव की मौलिकता स्पष्ट है। आक्षेप तथा उपमा के भेदों में केशव ने अनावश्यक का उपयुक्त त्याग किया है। अलंकारों के जो नाम बदले हैं वे भी पुराने नामों की अपेक्षा अधिक सार्थक जान पड़ते हैं। निर्देश यथास्थान कर दिया गया है। शब्दालंकारों की कोई चर्चा नहीं है। जिन अलंकारों का जितना अधिक महत्व है उतना ही उनका विवेचन अधिक है। चित्रालंकार के महासमुद्र में से हमारे आचार्य ने समय की गति को पहचान कर केवल कुछ ही क्षण लिए हैं और उसको सबसे अंतिम प्रभाव में स्थान दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि अलंकारों का क्रम सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने का संकेत है। केशव पर प्राच्यों का ही अधिक प्रभाव है, नव्यों का नहीं। अलंकारों की संख्या, क्रम तथा वर्ग इसी तथ्य के प्रमाण है। अलंकारों की संख्या भामह में 40 है, जिनमें से 3 का निरसन तथा 1 का तिरस्कार करके भामह 36 अलंकारों का वर्णन करते हैं। आसी के सहित संख्या 37 होगी। डंडी ने 34 अर्थालंकार तथा यमक और चित्र योग 36 का वर्णन किया है। आवृत्ति दीपक को अलग मान ले तो संख्या 37 हुई। उद्भट का अलंकार 41 है। 3 अनुप्रास तथा 1 पुनरुक्त वदाभास को अलग कर लीजिए, संख्या 37 रही। वामन के अलंकार 31 या 33 माने जाते हैं। रुद्रट में अलंकारों की संख्या बढ़ने लगती है। यही ध्वनि पूर्व काल है जिसका केशव पर गंभीर प्रभाव है। केशव ने अनुप्रास आदि शब्दालंकारों को नहीं अपनाया। उनके वर्णित अलंकार संख्या में 37 ही हैं। अलंकारों के नाम तथा क्रम भी पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हैं और इससे भी पूर्व वर्गीकरण। जिस प्रकार उद्भट के वर्गीकरण को अवैज्ञानिक कहा जाता है उसी प्रकार केशव के वर्गीकरण को भी। वस्तुतः वर्गीकरण का सर्वदा विश्लेषणात्मक होना अनिवार्य नहीं, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तो भी हो सकता है। उद्भट का वर्गीकरण भौगोलिक था, केशव का ऐतिहासिक। उनके वर्गों पर ध्यान देने से ध्वनि पूर्व काल की कहानी आंखों के सामने घूमने लगती है। भामह से रुद्रट तक की क्यों घोष तक आचार्यों ने अपने अपने वर्गीकरण है। किसी ने स्कूलों को ध्यान में रखकर अलंकारों के वर्ग बनाए तो किसी ने उनको वास्तव, औपम्य, अतिशय तथा श्लेष के विशेष भेद कहा। कोई उनको उपमा के प्रपंच कहने लगा तो कोई उनको बाह्य, आभ्यंतर आदि। कोई आचार्य भेद प्रधान, अभेद प्रधान, भेदाभेद प्रधान से भी संतुष्ट न रहकर एक दर्जन से अधिक अन्य वर्ग भी बना बैठा। प्रत्येक आचार्य में सच्चाई माननी ही पड़ेगी। केशव ने डंडी के अनुकरण पर जमक तथा चित्र सबसे अंत में रखे हैं और उनके अलग अलग प्रभाव बना दिए हैं। उपमा को सर्वालंकर सिरोरत्न भी माना गया है और उभयलंक्रिया मानकर इसका अंत में वर्णन भी है। केशव ने इसको जमक सूत्र से पूर्व प्रभाव में स्थान दिया है। नवम से त्रयोदश प्रभावों में 34 अलंकार है। नवम का क्रम भोज के अनुसार है, जाति या स्वभावोक्ति, विभावना, हेतु, विरोध, विशेष भी विरोध जाति का है। उत्प्रेक्षा भी इसी प्रभाव में है। आक्षेप के लिए अलग प्रभाव आवश्यक ही जान पड़ता है। एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश प्रभावों में 27 अलंकार हैं, पुराने भी तथा नए भी। इन प्रभावों का क्रम भामह के तृतीय परिच्छेद से अनुप्रेरित होकर बीच बीच में अत्याधान करता गया है। उक्ति नाम का अलंकार भोज में भी था। प्रियस, रसवत, ऊर्जस्वी, श्लेष आदि को सभी प्राच्य आचार्यों ने एक साथ रखा है। रूपक और दीपक भामह ने भी इसी क्रम के पास रखे हैं। केशव के नवीन अलंकारों की उद्भावना की है। कुछ के नाम बदले हैं, केवल तमाशे के लिए नहीं, उनका अध्ययन गांभीर्य सापेक्ष है। आचार्य केशवदास की प्रतिभा और पांडित्य का मुख्य निदर्शन कविप्रिया का यही विशिष्टालंकार प्रसंग है। बहुमुखी ज्ञान, अथाह पांडित्य, निस्संग विवेचन तथा उपयुक्त उदाहरण उनके व्यक्तित्व की कुछ झलक दिखा सकते हैं। उनके समय में अलंकार शास्त्र का यह प्रभाव संस्कृत भाषा में ही चल रहा है। केशव संस्कृत में भी अनेक आचार्यों के समान लिख सकते थे, परंतु प्रवीण राय के प्रति स्नेह या बाला बालकों के प्रति कर्तव्य की भावना उनको भाषा में खींच लाई और भाषा कवि के लिए इस आचार्य ने एक नया क्षेत्र खोल दिया, बिल्कुल अछूता, अनंत तथा गंभीर। पांडित्य की दृष्टि से वे भाषा कवियों के सर्वरत्न हैं और प्रभा की दृष्टि से उनको संस्कृत के मान आचार्यों के साथ आसन मिल सकता है। तो ये था डॉक्टर ओम प्रकाश की कविप्रिया, जो यहीं समाप्त हो रही है।